अध्याय 23 धर्म प्रचार कार्य के अन्य अन्य क्षेत्र। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को अंधे बच्चे की सेवा करने के लिए भेजता है। स्वर्गदूत उनके कदमों को सुरक्षित रखते और उन हजारों खतरों से जिससे वे अनजान होते हैं कि वे उनके रास्ते में हैं, बचाते हैं। वह उसकी प्रार्थना पर कभी कान न देगा जब वे अंधों और बीमारों को नजरअंदाज करेगा। यदि कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो अंधों को गिराने में सहायक होते हैं, उनको न्याय के सामने होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें अंधों का, विधवा का, मुसीबत के मारों का और अनाथों का संरक्षक बनाया है। रास्ते की रुकावट का मतलब बाइबल के अनुसार लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं जो अंधों के सामने रख दिया जाता है कि वे गिर पड़े, पर उसका यहां कुछ और ही अर्थ है। इसका अर्थ है कोई श्राप जो अपने अंधो भाई को कष्ट पहुंचाने के लिए दिया जाता है, कोई ऐसा काम जो उसकी रुचि के विरुद्ध हो, या फिर कोई काम जो उसकी संपन्नता को पीछे करने के लिए हो। एक अंधे व्यक्ति को किसी भी ओर देखने के लिए आंखों में रोशनी न होने का नुकसान भुगतना पड़ता है। वह हृदय जो किसी अंधे को देखकर दया और सहानुभूति से पूर्ण हो, उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। वो अपने जीवन का रास्ता उस अंधकार में ले जा रहा है जिसने पूरे संसार को घेरा हुआ है। ये बड़ा कठिन है, किंतु अवश्य है कि इस कठोर हृदय को नम्र बनाया जाना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है। अनाथों की चिंता। जब तक मृत्यु को निगल नहीं लिया जाता, उस पर जीत हासिल नहीं की जा सकती। तब अनाथों की चिंता करना होगी, जो एक नई, कई तरह से पीड़ित होगी। यदि कलीसिया के सदस्यों का स्नेह, सहानुभूति और प्रेम पूर्वक दया उनके साथ नहीं बरती गई, प्रभु कहता है, उन गरीबों को अपने घर में ले आओ जिन्हें तुमने बाहर कर दिया है। मसीहियत को ऐसे अनाथ हो, बेघर, बारों के माता पिता होना चाहिए। विधवाओं के प्रति सहानुभूति तथा अनाथों के लिए प्रार्थना और काम परमेश्वर के समक्ष याद रखे जाएंगे, ताकि आने पर पुरस्कृत हो। जब तुम गरीबों को शरण देते, पीड़ितों और पाप के बोझ से दबे लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाते और अनाथों के मित्र बन जाते हो, तुम प्रभु यीशु से अपना प्रगाढ़ दर्शाते हो। अनाथ बच्चे हैं जिनकी देखभाल की जानी चाहिए, लेकिन कई लोग इस काम को करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगती है जितनी वे उन्हें छोड़कर करते हैं। किंतु थोड़ा ही समय लगता है उन्हें खुश करने में, किंतु जब राजा जांच पड़ताल करेगा तो ये कुछ नहीं करेंगे। शैतान के गुलाम स्वार्थी लोग तब जानेंगे कि स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो प्रभु का काम करते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु के खातिर अपना इनकार किया। ऐसी कोई सुविधा उन्हें नहीं ऐसे लोगों के लिए जो उसके बाएं हाथ की ओर है। राजा ने बड़ा खतरनाक सजा रख छोड़ी है, किंतु इस मामले में नहीं, क्योंकि यह कोई बड़ा गुनाह नहीं है। वे इसलिए नहीं दोषी ठहराए गए कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने केवल स्वयं को खुश किया, इसलिए उनका भाग उन स्वार्थी लोगों के साथ ही होगा। अनाथों को प्रभु यीशु ने उसके पीछे चलने वालों के हाथों में सौंपा है, किंतु कई बार वे नकारे जाते हैं। शायद वे फटे पुराने कपड़ों में बदसूरत, भद्दा दिखते हैं, फिर भी वे परमेश्वर की संपत्ति है। उन्हें कीमत देकर खरीदा गया है, और जैसे हम प्रभु की नजरों में कीमती है, वैसे वे भी हैं। प्रभु के घर के सदस्य हैं, मसीही है। जैसे उसके सेवक उनके लिए जिम्मेदार है, उनका आत्मा प्रभु कहता है, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के हर सदस्य का काम अनाथों की देखभाल करना है। उनकी देखभाल केवल दिखावे के लिए नहीं, और कि आपका कर्तव्य है, किंतु उसी प्रेम के साथ जिसके कारण प्रभु यीशु ने इन आत्माओं को अपने लहू से खरीद कर तुम्हारी देखभाल में रखा है। और वह चाहता है कि तुम उन्हें प्रेम करो जैसे प्रभु यीशु ने तुमसे किया। जब तुम पापी ही थे और अपने कामों में लिप्त थे, वह लोगों की प्रार्थना नहीं सुनेगा जब तक कि अनाथ, लंगड़े, अंधों और बीमार लोगों को नकारा जाता है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र है जो प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं, उन लोगों की देखभाल करने के लिए जिनका कोई मित्र नहीं, वे बच्चे और जवान जिनके जीवन को इस योग्य बना दिया जाए कि उनका चरित्र इस योग्य हो कि वे परमेश्वर के बेटे बेटियां कहला सकें। ऐसे आशाहीन बच्चों को प्रेम से देखना, जिनमें से कई नादानियों के शिकार होते और ऐसी संगति में पड़ जाते हैं जो उन्हें बुराई और अपराध की ओर ले जाते हैं। ऐसे बच्चों को अच्छे वातावरण में लाकर उन्हें प्रभु यीशु के नज़दीक लाया जा सकता है, जहां उन्हें प्रभु यीशु का प्रेम और अच्छी देखभाल मिले और वे भी बचाए जा सकें। दूसरों के लिए किया गया ये काम परिश्रम स्वयं से इनकार और बलिदान की बिना नहीं किया जा सकता, किंतु थोड़ा सा बलिदान हम भी कर सकते हैं, जबकि परमेश्वर ने तो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को दे दिया। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है कि हम उसके साथ मिलकर परिश्रम करें। समाज के काले लोगों का वर्ग। इस देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्रभु का काम हुआ ही नहीं है। लाखों की संख्या में काले लोग जो रंग भेद नीति के शिकार हैं, अपील करते हैं कि उन्हें भी सहानुभूतिपूर्वक माना जाए, कि वे व्यवहारिक रूप से तथा पूर्ण सच्चाई से यीशु क्रीस्ट के विश्वासी हैं। ये लोग विदेशों में नहीं रहते, ना ही वे लकड़ी और पत्थर की बनी मूर्तियों के सामने झुकते हैं। वे हमारे ही बीच में रहते और बार बार परमेश्वर ने हमारा ध्यान ऐसे लोगों की ओर लगाया है। जब जब हमने पवित्र आत्मा की गवाहियों को सुना, यहां आज भी ये जाति सिर्फ रंग भेद के कारण उपेक्षित है। ये एक ऐसी जाति से घिरा क्षेत्र है जहां कार्य नहीं हुआ है, जो बुला रहा है कि परमेश्वर के वचन रूपी ज्योति उन्हें, वे जो प्रभु यीशु ने हम पर भरोसा कर हमें दिया है कि हम उसे फैलाएं। गोरे और काले लोगों के बीच में एक अलगाव की दीवार खड़ी की गई है। ये पक्षपात की दीवार उन लोगों के साथ ही गिर जाएगी जैसे मसीहों की दीवार गिरी थी, जब मसीही परमेश्वर के वचन को मानते हैं जो उन्हें उनके सृजनहार के सर्वोच्च प्रेम से जोड़ता और अपने पड़ोसियों के प्रति निश्चल लाता है। काश कि हर एक कलीसिया के सदस्य जो वर्तमान सत्य में विश्वास करते हैं, इस उपेक्षित कुचली हुई जाति जो गुलामी के परिणाम स्वरूप सुविधाओं और सोचने विचारने की शक्ति और काम करने की शक्ति का उपयोग करने से वंचित हुई है, इसके उद्धार व उत्थान के लिए कार्य करें। आओ अब हम दक्षिण के लोगों के लिए काम करने की योजना बनाएं। हम केवल उन्हें देखकर खुश न हों और न केवल किए गए वादों व प्रतिज्ञाओं के जो कभी पूरे नहीं किए गए, किंतु अब हम पूरे मन से प्रभु के लिए कुछ ऐसा करें कि उन रंग भेद की नीति से त्रस्त काले रंग के हमारे भाइयों व बहनों को निराशा के दलदल से बाहर निकालें। जीवन की पुस्तक में काले और गौरे लोगों के नाम साथ साथ लिखे हुए हैं। प्रभु में सब एक है। जन्मपद, राष्ट्रीयता या रंग किसी का उठा या गिरा नहीं सकता, मनुष्य को उसका चरित्र बनाता है। यदि एक भारतीय, एक चीनी या एक अफ्रीकन प्रभु यीशु में विश्वास लाता और आज्ञा पालन करता है और अपना हृदय प्रभु यीशु को देता है, तो परमेश्वर रंग को नहीं देखता, सिर्फ उससे प्रेम करता है। उसे वह एक अच्छा प्रिय भाई कहकर बुलाता है। परमेश्वर हर एक आत्मा का, जो चाहे अफ्रीका की प्रजाति हो क्यों न हो, यदि प्रभु के लिए जीती है कि प्रभु की सेवा करें, जो प्रभु उसकी इज़राइल से अधिक चिंता करता है। वह अपने लोगों से कहीं अधिक अपेक्षा करता है, उन लोगों की अपेक्षा जो उसे सौंपे गए हैं और जो उन लोगों में शामिल है जो परमेश्वर के काम को करने वाले हैं, चाहे वे दक्षिण भारत के विभिन्न वर्गों के लोग हों और विशेषकर काले रंग के लोग। क्या हम पर इन काले रंग की जाति के लिए परिश्रम करने का अधिक उत्तरदायित्व नहीं है? उनकी अपेक्षाओं ज्यादा पसंद किए जाते हैं। वे कौन लोग हैं जिन्होंने इन्हें गुलामी करने के लिए मजबूर किया? किसने इन्हें सच्चाई के ज्ञान से दूर रखा? यदि ये पूरी जाति पिछड़ी हुई है, समाज में कोई स्थान नहीं रखती, यदि इनके तौर तरीके और आदतें अच्छी नहीं हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या गोरे लोगों को इनके लिए परिश्रम करना नहीं बनता? जबकि इन लोगों के साथ इतना अन्याय हुआ है, क्या अब उन्हें आगे लाने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए? सच्चाई उन तक पहुंचनी ही चाहिए। उन्हें भी आत्माओं को बचाने का हम है जैसे हमें है। संयम में सुधार लाना। जितने भी संयम को अपना मित्र बताते और अपने आप को संयम रखने वालों में गिनते हैं, उनमें सब्बत, सातवां दिन मानने वालों को सबसे पहले स्थान पर खड़े रहना चाहिए। जब भी संयम रखने की बात आती है, तब अपने स्थान पर दृढ़ रहो, चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहो। लोगों की भीड़ के सामने बोलने के अलावा हमें संयम बनाए रखने के लिए भी काम करने की जरूरत है। अपने सिद्धांत पत्रिकाओं में और अखबारों में भी छपवाना चाहिए। हमें हर संभव साधन अपनाने चाहिए जिससे लोगों को उनका कर्तव्य करने के लिए उनके साथ जुड़ना है जो सत्य जानते ही नहीं। हम प्रचार कार्य में हमने जो सफलता पाई है उसके लिए पूर्ण रूप से स्वयं का इनकार, स्वयं का समर्पण आदि प्रयासों का अधिकाधिक उपयोग हुआ है। केवल प्रभु ही जानता है हमने क्या क्या काम पूरे किए हैं। जैसे कि प्रजा की तरह हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करते हैं और संयमी होने के सच्चाई को सामने स्पष्ट और सीधे तरीके से उद्घोषित करते हैं। संयम रखने का अर्थ है कि परमेश्वर के लोगों का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त करना। असंयम सब पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा है, अपने काम में लीन रहना बढ़ रहा है। अतः स्वास्थ्य संबंधी सुधार की किताबों की अत्यधिक जरूरत है। सुसमाचार फैलाने के लिए साहित्य का उपयोग एक अच्छा तरीका है। साथ ही नए लोगों को बाइबल अध्ययन और बाइबल के वचनों की खोज के लिए अगुवाई करना ताकि वे सत्य जान व समझ सकें। उन्हें असंयमी होने वाली बड़ी बुराई से बचने के लिए पहले से चेताना होगा और जिससे ऐसा किया जा सके। सब्बत को मानने वाले हर व्यक्ति को वे सारे निर्देशों जो उन सामयिक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, पत्रिकाओं, पुस्तकों में दिए हैं का गहन अध्ययन करना व समझना जरूरी है। साथ ही उसका व्यवहारिक इस्तेमाल भी होना चाहिए। इन्हें और एक काम करना चाहिए, वो ये कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन पत्र पत्रिकाओं व किताबों को अपने आसपास के लोगों में बांटें। लोगों को बुरी आदतों से संयम रखने और उसे त्याग देने के लिए प्रतिज्ञा लेना चाहिए, उन्हें ये कहकर कि जितने रुपये वे मदिरा, तंबाकू और ऐसी ही अन्य व्यसनों में खर्च करते हैं वह पैसा उन्हें बीमारों, गरीबों के लिए या बच्चों को प्रशिक्षित करने तथा जवानों को जगत में एक उपयोगी व्यक्तित्व हासिल करने में लगाना चाहिए। दोबारा प्रयास का महत्व। जिस प्रकार लोगों की एक बड़ी भीड़ के सामने सच्चाई का बखान करने के परिणाम स्वरूप आत्मा में कुछ प्रश्न अपने आप जागृत हो जाते हैं, और ये विशेषकर जरूरी भी है कि ऐसी रुचि को व्यक्तिगत रूप से परिश्रम की आवश्यकता है कि वचन का अध्ययन बड़ी अच्छी तरह से कराया जाए। किसी न किसी को उनकी विश्वास की नींव पर सच्चाई का भवन खड़ा करना होगा। ऐसे कठिन मौके पर, जबकि उनकी धार्मिकता का अनुभव शुरू ही हुआ है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि बाइबल सिखाने वाले बुद्धिमान लोग मदद के लिए सामने आए और उनकी समझ के अनुसार उन्हें परमेश्वर के वचन के खजाने को उनके सामने खोल दे। सुनहरा अवसर तो गवा दिया गया, जो प्रभाव डाले गए थे उन्हें दोहराया नहीं गया। शायद ये ज्यादा अच्छा होता कि ये कोई रुचि जागृत ही नहीं की जाती, क्योंकि जब जीवन में बदलाव आ जाता और जीवन की बातों पर काबू पा लिया जाता है तब बड़ा मुश्किल होता है फिर से सच्चाई के साथ वही प्रभाव मन मस्तिष्क पर डाला जा सके। साधनों का भंडारीपन। परमेश्वर सारे खर्चों को पूर्ति के साधनों में हमें उस परमेश्वर के जो अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम है, के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना है। पैसे का काफी मोल है, क्योंकि पैसा काफी बड़े भलाई के काम कर सकता है। परमेश्वर के बेटे बेटियों के हाथों में वह उनका भोजन है। प्यासों के लिए पानी है, नंगों के लिए कपड़े है, और पीड़ितों के लिए छुटकारा और बीमारों की मदद के लिए साधन है। किंतु पैसे का मोल रेत से अधिक नहीं है, केवल लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया गया। धन ही उपयोगी है जो दूसरों को आशीष देता और प्रभु यीशु का काम आगे बढ़ाता है। परमेश्वर ने स्वयं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं प्रारंभ की हैं और उनको पूरा करने के लिए साधन भी जरूरत से कुछ ज्यादा ही प्रदान किए हैं, क्योंकि जब भी वह मदद के लिए बुलाता है उत्तर में वे ये कहते हैं, प्रभु तेरे एक तोड़े से बहुत से दूसरे तोड़े प्राप्त हुए हैं।
पैसा दूसरे जीवन में नहीं ले जाया जा सकता, वहां उसकी जरूरत ही नहीं है। किंतु भले कार्य जो प्रभु यीशु के लिए आत्माओं को जीतने के लिए किए गए हैं वे स्वर्गीय अदालतों में ले जाए जाएंगे। किंतु वे जो प्रभु के दिए हुए वरदान को अपने लिए ही खर्च करते हैं और अपने जरूरतमंद मानव प्राणियों को बिना मदद के छोड़ देते हैं और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते, वे अपने रचयिता का अपमान करते हैं। परमेश्वर के प्रति चोरी स्वर्गीय किताब में उनके नामों के सामने लिखी गई है। आज के समय में आत्माओं को बचाने के एवज में पैसों की कोई कीमत नहीं। हर एक पैसा जो हमारे पास है वो प्रभु का है, हमारा नहीं, और परमेश्वर की ओर से सौंपा गया बहुमूल्य धरोहर है, और वो बेकार के कामों में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, किंतु सावधानी से परमेश्वर के काम में खर्च किया जाना चाहिए। स्त्री पुरुषों को नाश होने से बचाने में लगाना चाहिए। क्या प्रचार सहायता कार्य ये नहीं है कि हमारे पर्याप्त महत्वपूर्ण, इस जगत में हमारे प्रभाव व निर्भरता का अधिकार हो? क्या हमें अपने फिजूल खर्ची से इनकार नहीं करना है और हमारे सारे उपहार प्रभु के खजाने में जमा करें, जिससे सत्य की दुनिया के अन्य देशों में भेजा जा सके, जिससे आंतरिक प्रचार कार्य सेवा पूरी की जा सके? क्या इस काम को करने के लिए परमेश्वर की सम्मति की जरूरत है? इन अंतिम दिनों के लिए किया गया काम बड़े बड़े दानों द्वारा सहयोग नहीं किया गया या जगत के प्रभाव के कारण आगे बढ़ा, ये तो प्रभु द्वारा दिए गए उपहारों द्वारा संभव। हमें एक नाम देने के लिए बुलाया है जिससे नई पृथ्वी के अधिकारी है। मुझे दिखाया गया कि लेखाकार स्वर्गदूत बड़ी ईमानदारी से हर एक उपहार जो उसे समर्पित किया जाता और खजाने में रखा जाता, उन साधनों का अंतिम परिणाम भी दान के रूप में होता है, परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर के लिए किया गया। हर एक समर्पण की जानकारी होती है, और इच्छा से देने वाला और बेमन से देने वाला भी परमेश्वर की नजरों से नहीं छिपता। दान देने के पीछे मकसद क्या है, ये भी लिखा जाता है। वे स्वयं समर्पित सब कुछ प्रभु को सौंपने वाले, और कुछ प्रभु ने उन्हें दिया है वो वापस लौटने वाले भी। जो प्रभु उनसे चाहता है, ये सब अपने कामों के अनुसार पुरस्कृत किए जाएंगे। यद्यपि उन्हें प्रदान किए गए साधन भी सही तरह से काम में नहीं लाए जाएंगे, और इस तरह उस दान को देने वाले की इच्छानुसार काम पूरा नहीं होता है। प्रभु की महिमा और आत्मा का उद्धार। आत्मा की सच्चाई से समर्पित होते तथा साथ ही साथ प्रभु की ओर भी लगाते और महिमा करते, वे कभी भी अपना पुरस्कार नहीं खोएंगे। हर वो अवसर जो एक भाई की जरूरत के समय मदद करे या परमेश्वर का काम सच्चाई को फैलाने में सहायता करें, वो एक कीमती मोती है जो पहले से ही स्वर्ग के खजाने में जमा करा दिया जाना चाहिए, ताकि सुरक्षित रहें। परमेश्वर तुम्हें परख रहा और खरा बना रहा है। वो तुम्हें खुले हाथों से आशीषें दे रहा है, और ये देख रहा है कि तुम उसका कैसा इस्तेमाल करते हो, ये देखने के लिए कि तुम जरूरतमंद की मदद करते और उस आत्मा की कीमत पहचानते, और वे सब करते जो कुछ कर सकते हो उस साधन से जो उसने तुम्हें दिया है। ऐसा हर अवसर तुम्हारे स्वर्गीय खजाने में वृद्धि करता है। उस स्वर्गीय वृत्तांत प्रक्रिया। स्वर्गदूत हर एक प्राणी का लेखा बड़ी ईमानदारी से रखते हैं। हर एक प्रेमपूर्ण कार्य, हर दया से पूर्ण शब्द, हर प्रार्थना जो दुखी, पीड़ित और बोझ से दबे लोगों के लिए की जाती है, वो प्रभु के सिंहासन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है, और स्वर्ग के कभी न मिटने वाली जानकारी के रूप में पाई जाती है। एक जानकारी स्वर्ग को पहुंचाई जाती है। हमारा हर काम जो सफलतापूर्वक किया गया, वो परिश्रम जो अंधकार को दूर करने और चारों ओर प्रभु यीशु के ज्ञान को फैलाने में किया, स्वर्ग तक पहुंचा है। क्योंकि हर एक काम परमेश्वर पिता के सामने लाया जाता है, और संपूर्ण स्वर्ग में खुशियां छा जाती है। स्वर्गदूतों को हमारे सहायक के रूप में भेजा गया है। वे लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आ और जा रहे हैं। वो जानकारी लेकर ऊपर जा रहे हैं जो उसके बेटे बेटियों ने काम किए हैं।
ये अच्छा है कि याद रखने के लिए लेखा स्वर्ग में रखा जा रहा है, वो किताब जिसमें कुछ घटाया नहीं जाएगा, कोई गलती भी नहीं होगी, जिसमें उनका न्याय होगा। वहां पर हर एक खोए हुए अवसर की जानकारी लिखी होगी जब प्रभु की सेवा की जा सकती थी, और साथ ही हर वो काम जो प्रेम और विश्वास से किया गया, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा।